उससे आप लोगों का कितना लाभ होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बहुत लाभ हुआ है। वो यह हुआ है कि मैं तरुणाई को सामने देख रहा हूं। तरुणाई का अर्थ है खिली हुई जिंदगी, प्रफुल्लित जीवन। हमारे यहां तारुण्य ईश्वर का गुण माना गया है। ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए तरुण में मेरी श्रद्धा है, तरुणाई में श्रद्धा है। उस श्रद्धा को लेकर अपने कुछ अरमान, अपने कुछ आकांक्षाएं, कुछ आशाएं, कुछ वेदनाएं भी आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरा अपना कोई संदेश नहीं, मैं तो मालिक का माल बांटता रहा हूं। गांधी का ढोलकिया रहा, विनोबा के भी बाजे बजाए और जेपी का भी ढोलक बजाए। इससे मेरी हैसियत और कोई अलग या ऊंची नहीं है, लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य मेरा यह है कि दोपहर से मेरी अपनी कुछ आकांक्षाएं, कुछ आशाएं, कुछ वेदनाएं भी आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरा अपना कोई संदेश नहीं, मैं तो मालिक का माल बांटता रहा हूं। गांधी का ढोलकिया रहा, विनोबा के भी बाजे बजाए और जेपी का भी ढोलक बजाए। इससे मेरी हैसियत और कोई अलग या ऊंची नहीं है, लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य मेरा यह है कि दोपहर से मेरी तबीयत जरा बिगड़ गई, तो आवाज क्षीण रहेगी। जो कहना चाहता हूं शायद पूरा कह भी नहीं पाऊंगा, लेकिन पहली चीज जो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवान लड़के और लड़कियां, अब मैं ऐसी उम्र में हूं कि मेरे बेटे भी दादा बन गए हैं, इसलिए मैं लड़के लड़कियां कह रहा हूं। उनसे जो पहली चीज, इस देश में जितने रास्ते हैं उनसे रास्ते दिखाने वाली तर्जनियां, इंडेक्स फिंगर कहीं ज्यादा है। रास्ते ही जो आता है वो रास्ता दिखाता है, दिखाए हुए रास्ते पर जो चलता है वो कहीं नहीं पहुंचता। हर पीढ़ी को रास्ता पूछना नहीं चाहिए, खोजना चाहिए। रास्ते खोजने की, नई पगडंडियां बनाने की जिसमें ऊर्जा है और आकांक्षा है वो तरुण है। चाहे 8 साल का हो, 18 साल का हो या 80 साल का, बने बनाए रास्ते पर चलने वाले, उनका नाम अंग्रेजी में है प्रिमरोज पाथर। राजमार्ग पर फूल बिछे हुए हैं और उन फूलों पर चल रहे हैं। प्रिमरोज पाथर कभी समाज का कोई कल्याण नहीं करते। कल्याण करना है तो किस लिए? गरीबों की सेवा करनी है, किस लिए? इसलिए कि गरीबी न रहे और सेवा की जरूरत भी न रहे। मित्रों, सेवा का खपत, सेवा का व्यसन एक बीमारी है। हमारे एक मित्र हैं, मैं बीमार हो गया, मेरे पास आए, कहने लगे कि हमारा बड़ा भाग्य है कि हमको मौका मिला आपकी सेवा करने का। तो मैंने कहा, मेरी बीमारी को धन्यवाद दीजिए, मुझे क्या दे रहे हैं? मैं बीमार नहीं होता तो आपको मौका नहीं मिलता और आपका पेशा भी नहीं रहता। ये जो समाज सेवक है, ये एक बिचौलिया है, बीच का आदमी है, मध्यस्थ। एक है पुरोहित, जो भक्त और भगवान को कभी मिलने नहीं देता, ये उसका फंक्शन है। दूसरा है ब्रोकर, बाजार का दलाल, जो कभी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, उत्पादक और उपभोक्ता को मिलने नहीं देता, यही उसका काम है। और तीसरा है पॉलिटिशियन, राजकीय पुरुष और समाज सेवक। ये मनुष्य को मनुष्य से मिलने नहीं देते, क्योंकि उनका पेशा ही नहीं रहेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या हो? सेवा की आवश्यकता समाज में बिल्कुल न हो, और हो तो सहायता की आवश्यकता, सेवा की नहीं। सहायता में बराबरी होती है, सेवा में बराबरी नहीं होती। अब मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जिसे शायद आप सुनने को तैयार नहीं रहेंगे। दूसरी बात आपसे कहनी है, तरुण को अपनी आंख से दुनिया को और सारी समस्याओं को देखना चाहिए, किसी के चश्मे में से नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरा विश्व रूप अगर देखना चाहता है तो तुझे दूसरी आंख दूंगा, यह आंख काम की नहीं है। वो दूसरी आंख कौन सी है? अपनी आंख है। इस देश में और दुनिया भर में हर जगह, हर चौराहे पर चश्मा फरोश, अग्नि ऐनक फरोश बैठे हुए हैं। वो चश्मे बेचते हैं, कोई मोहम्मद का, कोई बुद्ध का, कोई कृष्ण का, कोई गांधी का, कोई मार्क्स का। चश्मे ही चश्मे हैं, आंख खो गई है। तो दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि अपनी आंख साबित रखो, अपनी आंख से देखो और अपने दिमाग से समझो। उधार नहीं, कोई चीज उधार नहीं लेनी है। सारी चीजें हमारे भीतर से आनी चाहिए। अभी कुलपति जी ने कहा कि मैं अपने अनुभव से कुछ कहूं। अनुभव बुद्धि को क्षीण करता है, मर्यादित करता है। अनुभव ज्ञान नहीं है, अनुभव दर्शन नहीं। जितना अनुभव होता है उतना ही कहूं तो फिर मेरी बुद्धि का कोई उपयोग नहीं। तो आपसे तीसरी बात यह कहनी है कि तरुणाई का एक लक्षण यह है कि जो आज तक नहीं हुआ वो कल अवश्य होगा, होकर रहेगा। कल जो नहीं हुआ वो आज होता है, इसलिए इतिहास लिखा जाता है। अनहोनी घटनाओं की सूची का मालिका का नाम इतिहास है। जो कल हुआ वही आज अगर होगा तो कोई इतिहास लिखेगा? वो तो रेलवे का टाइम टेबल हो जाएगा, इतिहास होगा ही नहीं। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे सवाल किया कि आज तक कभी बगैर तलवार के किसी को राज्य मिला है? कहा नहीं मिला। तो कह बैठ गया। बैठ क्यों गए? नहीं, आपने स्वीकार कर लिया, आप पूछने ही क्या? मैं कहा स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब मैं पूछता हूं, तेरा पूछना हो गया। 20 साल पहले तू पैदा हुआ था? क्या नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा अब हो गया है और आगे सब होने ही वाला है। तेरी शादी होने वाली है, तुझे बेटे होने वाले हैं, मेरा सब हो चुका है। अब मेरा होने वाली एक ही चीज रह गई है, मेरी मौत। लेकिन तेरे लिए तो जिंदगी का सारा नक्शा सामने फैला हुआ है। जो कल नहीं हुआ वो आज होता है, और इसीलिए दुनिया आगे जाती है। इतिहास में अंतिम अध्याय कभी होता ही नहीं। यह तरुणाई है मित्रों, यह तरुणाई की आंख है। जिसकी आंखें पीछे को और जिसके पांव पीछे को, उसे भूत कहते हैं। आंखें भी आगे को देखती हैं, कदम भी आगे को चलता है। सत्य युग पीछे नहीं गया, आगे आने वाला है। कौन लाएगा? तरुणों की ऊर्जा लाएगी। मेरे एक मित्र हमारे साथी कॉलेज छोड़ा था, बूढ़े हो गए थे, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे, पत्नी नहीं रही थी, लड़कियों की शादियां हो गई, एक ही बेटा था, वो शराब पीता था। हमारी संस्था वालों ने कहा कि इसको लेकर आप यहां नहीं रह सकते। तो मेरे पास आए कि मैं क्या करूं, इसके सिवा तो कोई मुझे है नहीं, यही अकेला है जिसके कंधे पर मुझे जाना है। मैंने कहा मेरे कंधे तो है नहीं, मैं आपको ले नहीं जा सकता। आपकी बात सही है, हमारे तरुण उखड़े उखड़े हुए हैं, उनके चारों खुर हवा में हैं, लेकिन उनके सिवा हमें कोई है नहीं। हमारी पालकी ढोएंगे तो वो ढोएंगे, और अर्थी ढोएंगे तो वो ढोएंगे। इसलिए मित्रों, एक आस्तिकता होती है क्रांतिकारी में। आस्तिकता का मतलब है कि हर व्यसनी, हर दुर्जन के भीतर मानवता की चिंगारी है, जिसे हम ईश्वर का अंश कहते हैं। यह आस्तिकता है, हमारे यहां इसका बहुत बड़ा महत्व है कि संस्कृत भाषा में और इस देश की किसी भाषा में शैतान के लिए शब्द नहीं है। शैतान शब्द का अनुवाद इस देश की किसी भाषा में नहीं हो सकता। कारण भी साफ है अगर भगवान ने सबको बनाया तो शैतान किसका बेटा है? तब तो शैतान को बनाने के लिए दूसरे भगवान की जरूरत होगी, और भगवान दो हो जाते हैं तो दोनों शैतान हो जाते हैं। एक है तभी तो भगवान रहता है। इसलिए हमने शैतान को अपना रिश्तेदार माना, उसमें वो भगवान का बेटा है तो कुछ तो गुण आए ही होंगे बाप के। हमारे यहां कृष्ण का मामा राक्षस है, रावण का बाप ऋषि है, प्रहलाद का बाप राक्षस है, तो ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। मित्रों, सदस्यता से इस्तीफा दिया जा सकता है, लेकिन रिश्तेदारी से इस्तीफा नहीं दिया जा सकता। गांधी हरिलाल को निकाल सकता था, लेकिन पितृत्व का इस्तीफा नहीं दे सकता। तो ये एक और चीज आपसे कहनी है कि अब दुनिया को सदस्यता से रिश्तेदारी की तरफ कदम बढ़ाना, संस्था से कुटुंब की तरफ, संस्थावाद से पारिवारिकता की ओर, यह अगला कदम है साम्यवाद और समाजवाद किससे के आगे का। कौटुंबिकता में रिश्तेदारी है, सदस्यता नहीं। सदस्यता ली जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। रिश्तेदारी चाहे प्रेम की हो चाहे खून की हो, छोड़ी नहीं जा सकती। दोस्त दोस्त है, दुश्मन कोई नहीं है। दुश्मन जिसे हम कहते हैं वो गलत रास्ते पर गया हुआ दोस्त है। गांधी ने इसलिए अपनी क्रांति के प्रक्रिया में एक आयाम जोड़ दिया, हृदय परिवर्तन। दुर्जन से दुर्जन का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, ये विश्वास, इसे आस्तिकता कहते हैं। ये आस्तिकता तरुणों में होनी चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थी हैं, कॉलेज में हैं। हर एक बालक शिक्षण पाने के योग्य है, ये मूलभूत विश्वास है, श्रद्धा है हर शिक्षक की, अन्यथा वो शिक्षक नहीं हो सकता। और वही मूलभूत श्रद्धा विद्यार्थी में होनी चाहिए। इसलिए तरुणियों और तरुणों, अपने से पहला सवाल ये पूछो कि हम क्या इसी समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, क्या इसी समाज में रोजी रोटी चाहते हैं, क्या इसी समाज में जीविका चाहते हैं, या इसको बदलना चाहते हैं। ये अपने से सवाल पूछिए, जवाब मुझे नहीं चाहिए, स्वयं अपने को जवाब दे दीजिए। ये समाज कैसा है? ये समाज ऐसा है जिसमें जहां भूख है वहां अन्न नहीं है, जहां अन्न का ढेर है वहां भूख लगने के लिए दवा लेनी पड़ती, जहां नंग है वहां कपड़ा नहीं है, जहां कपड़े हैं वहां कपड़े पहनने के लिए मौका खोजना पड़ता है, जहां बेघर के आदमी हैं, घर बार नहीं है, सड़क पर सोता है या पुल के नीचे सोता है, उसके घर नहीं है। जिसके घर हैं उनके घरों में कोई रहने वाले नहीं, खाली पड़े हुए हैं, चमगीदड़ उनमें है। क्या इस समाज को आप मनुष्य के रहने योग्य समाज मानते हैं? लोग मुझसे कहते आए हैं कि ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है। मैंने कहा मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूं, उस पर ऐसा आरोप नहीं कर सकता कि ऐसी दुनिया वो बनाएगा। बर्ट्रैंड रसेल ने एक जगह कहा है, इट सीम्स टू मी दैट द डेविल मेड दिस वर्ल्ड व्हेन गॉड वाज नॉट लुकिंग। चौमासे में ईश्वर की आंख झपक गई और उसमें से मौका पाकर शैतान ने ये दुनिया बना डाली, जिसमें ऐसा उल्टा इंतजाम। आपके घर में कभी ये होगा कि जो बीमार बच्चा है उसको तो आप बासुंदी रबड़ी पिला रहे हैं और जो बच्चा चंगा है उसको क्विनाइन खिला रहे हैं? ये कभी होगा? कोई सही दिमाग का इंसान भी ये करेगा? जो आरोप हम भगवान पर लगा रहे हैं, ये दुनिया इंसान के नाप की नहीं, मनुष्य के नाप की नहीं, इसको कौन बदलेगा? हम बदलेंगे, हमसे मतलब तरुण। खूब याद रखिए, साहूकार बदलेगा तो बदली हुई दुनिया को खरीद लेगा। आज भी वो सबको खरीदता है, विद्या खरीदता है, गुण को खरीदता है, चारित्र्य को खरीदता है, भगवान को भी खरीदता है। वो सबको खरीद लेगा और यही तो आपका आरोप है उस पर कि सरकार को पूंजीपति खरीद रहे हैं। एक ये भीमसेन सच्चर ने एक किस्सा सुनाया था, बड़ा मजे का है। एक आदमी से कहा दूसरे पक्ष के पार्टी के लोगों ने कि तुम हमारे यहां आ जाओगे तो 40,000 रुपए देंगे और तुमको हम मंत्री बना देंगे। वो आ गया तो उसे 20,000 रुपए इन्होंने दिए। तो वो आकर सभाओं में कहने लगा, सार्वजनिक सभाओं में, कि देखिए दुनिया में कैसी बेईमानी है। उससे कहा था 40,000 देंगे और 20,000 दिए। ये पैमाना नहीं है मित्रों। अगर आप स्कूल में कॉलेज में कॉपी करेंगे, सोशल गैदरिंग्स में पैसा खा जाएंगे, एक दूसरे का भरोसा नहीं करेंगे, तो आप हमसे घटिया होंगे क्योंकि हमारी कार्बन कॉपी बनेगी। एक लड़के ने सभा में कहा था मुझसे कॉलेज में कि तुम्हारे मिनिस्टर्स करप्ट हैं। मैंने कहा है, धर्मगुरु करप्ट हैं। मैंने कहा सब भ्रष्टाचारी है, मानता हूं। शिक्षक भी सब भ्रष्टाचारी है, मैंने कहा ये भी मानता हूं। नेता सब भ्रष्टाचारी है, मैं ये भी मानता हूं। तो बैठ गया। मैं कहा क्यों बैठ गए? तो वही जवाब, आपने सारी चीजें मान ली, अब कहने को क्या रह गया? मैंने कहा मुझे कहना है, क्या कहना है? हम भ्रष्ट हैं, नालायक हैं, तुम हमारी औलाद हो। हमारी नकल मत करो। जब तक तुम हमारी नकल करोगे विद्यार्थियों, तुम्हारी कोई समस्या हल नहीं होने वाली है, लिख लो, गांठ बांध लो। अगर समस्याएं हल करनी है तो अपने भरोसे करो। सरकारें बदलने से और वाइस चांसलर बदलने से समस्या हल नहीं होगी। तुम हड़ताल करोगे, घेराव करोगे, एक वाइस चांसलर जाएगा, दूसरा आएगा, इंदिरा जी जाएंगी, मोरारजी आएंगे, मोरारजी जाएंगे, चरण सिंह आएंगे, चरण सिंह जाएंगे, कोई और नथु खैरा आ जाएगा। इससे कोई समाज परिवर्तन होगा? तुम्हारी समस्या का समाधान होगा? कैसे मान लिया ये? तुम एक नहीं, 100 इमारतें जलाओ, रोज दरवाजे तोड़ो, लेकिन इससे क्या समस्या हल हो जाएगी? अपने से पूछो कि हम क्या चाहते हैं। तुम्हारी मुख्य बीमारी यह है कि तुम अपने लिए पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो मां बाप पर एहसान करने के लिए, पढ़ रहे हो सरकार के लिए। मित्रों, जो अपना काम नहीं होता उसमें हड़ताल होती है। रसोई वाली महाराजन हड़ताल कर सकती है क्योंकि अपना काम है नहीं। मां हड़ताल नहीं कर सकती क्योंकि उसका अपना काम है। तुम कॉलेज में जाने की हड़ताल बोल सकते हो, सिनेमा से हड़ताल नहीं कर सकते। जहां इंटरेस्ट है, जहां रुचि है, वहीं विकास होता है। शिक्षण में रुचि क्यों नहीं है? तुम ये मानते हो कि हम पढ़ रहे हैं दूसरों के लिए। ये लड़कियां पढ़ रही हैं शादी के लिए, ये लड़के पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए या जीविका के लिए। अपने से पूछो, क्या इस देश को सरकारी नौकरों का राष्ट्र बनाना चाहते हो? क्या ये सारा देश सरकारी नौकरों का होगा? मित्रों, क्रांति का अर्थ है मालिक और नौकर कोई नहीं होगा, मजदूर और महाजन कोई नहीं होगा। ये क्रांति का अर्थ है। ये तो अभी गांधी की संस्थाओं में भी चरितार्थ नहीं हुआ। मुझसे बात करने आए थे एक मित्र की, बड़ा विधायक कार्यक्रम हो रहा है, वो क्या रचनात्मक हो रहा है, ईंट पर ईंट रची जा रही है, लेकिन क्या मालिक और नौकर का रिश्ता हमारी संस्थाओं में नहीं है? क्या बाजार का महत्व हमारी संस्थाओं में से कम हो गया है? क्या बाजार हमारा नियंत्रण नहीं करता है? यह करप्शन का, भ्रष्टाचार का मूल है मित्र। जब तक बाजार है तब तक कोई सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता। इस देश में 3-4 प्रकार की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है पार्टियों की। पार्टी का उम्मीदवार होता है लेकिन प्रतिनिधि जनता का होता है, लोगों का होता है। पार्टी कहती है लोगों का प्रतिनिधि हमारा हुक्म माने। तो लॉर्ड हैलिफैक्स ने लिखा है अपनी किताब में The party is a conspiracy against the people. ये दल लोगों की जगह लेना चाहते हैं, आपस में इतना भी ईमान नहीं जितना गुनहगारों में होता है। चार चोर मिलकर चोरी करना चाहें तो आपस में चोरी नहीं कर सकते, ईमान चाहिए। पाप ही के मिलकर पाप करना हो तो पुण्य के सिवा नहीं होता, ये प्रभु की रचना का चमत्कार है। मिलकर कोई भी काम करोगे तो वो पाप से नहीं हो सकता, पुण्य से ही होगा। अब ये पार्टियां एक दूसरे का भरोसा नहीं कर सकती, और पार्टियों की का लोकतंत्र चलाना चाहती है। इस मुकाम पर वो पहुंच गई है। अब क्या कहती है कि कानून बनाओ और कानून से हमारी ईमान का रक्षण करो। कानून से किसी की ईमान का रक्षण आज तक हुआ है? दूसरे हैं प्रेशर ग्रुप, दबाव के गिरोह, छोटे छोटे स्वार्थ संगठित होते हैं, बाद में उन संगठनों में शक्ति आती है और वो सारे समाज को गिरवी रख सकते हैं। होल्डिंग द होल सोसाइटी एट रैंसम, ये शक्ति उनमें आ जाती है। एक दबाव ग्रुप, एक दबाव गिरोह दूसरे दबाव गिरोह से संबंध नहीं रखता। अब इनका हमारे देश में राजकारण चल रहा है। विद्या स्वार्थ है, स्वार्थ स्वार्थ से टकरा रहा है। क्या स्वार्थ के जोड़ और गुणाकार से क्रांति होती है? क्या लोग इन स्वार्थों के जोड़ और गुणाकार से बने हुए हैं? ये दूसरा राजकारण है। ये दोनों राजकारण अपनी हद तक पहुंच गए। तीसरा राजकारण है संख्या का। मित्रों, लोकतंत्र बहुसंख्या का राजकारण नहीं है, लोकतंत्र है बहुमत का। मत और संख्या में क्या फर्क है? आदत होती है एक ही टांग पर खड़े रहते, तो कह देखिए, अब ये इसका वेरिफिकेशन है, मैंने सिद्ध कर दिया कि सारे सारस पक्षियों के एक ही टांग है। उस मालक ने ताली बजाई तो वो दूसरी टांग दिखाकर उड़ गए। क्या तूने कैसे कहा कि एक ही टांग होते हैं? तो दो दो टांगे दिखाई दी। क्या आपने यहां ताली बजाई, वहां तो बजाई नहीं, वहां बजाते तो ये दूसरी टांग दिखा दे। ये संख्या की लोकशाही और ये प्रेशर ग्रुप्स की, दबाव गिरोहों की लोकशाही ताली बजाने से टांग नहीं दिखाई। इसमें जान फूंकनी होगी, और जान तब आएगी जब इसका अधिष्ठाता सिपाही नहीं नागरिक होगा, सैनिक नहीं नागरिक, डंडा नहीं लोगों की सम्मति। और वो लोग कौन है, किसे लोग कहा जाए? कल मैंने कहा था कि लोग वो लोग है जिसके हाथ में थैली नहीं, लाठी नहीं, और जिसके पास हुकूमत नहीं, तो फिर क्या है? वो सबको बनाने वाला है, उसने सबको बनाया है। किसी सिपाही ने अपनी तलवार नहीं बनाई, किसी राजा ने अपना तख्त नहीं बनाया, किसी साहूकार ने अपनी तिजोरी नहीं बनाई, लेकिन इन तीनों को बनाने वाला राजा से डरता है, साहूकार के सामने कुर्निसात करता है और डंडे वाले के धमकाने से भाग जाता है। क्रांति उसको होश दिलाना है कि तेरी शक्ति है, तलवार तू नहीं बनाता तो कहां से आती, तिजोरी तू नहीं बनाता तो कहां से आती, तख्त तू नहीं बनाता तो कहां से आता, ये सब तुझी से बनवाते हैं और हुकूमत वाला तुझे जोतता है, तलवार वाला तुझे धमकाता है, डराता है और थैली वाला तुझे खरीदता है। जो जूता पहन जूता बनाता है उसके पास पहनने के लिए जूता नहीं, जो खरीदता है उसके पास जूतों की मालिका है। खरीदने वाले को वस्तु मिलती है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलती, इसका नाम पूंजीवाद है। ये कैपिटलिज्म है और कुछ सोचने की बात ही नहीं है मित्र। जहां वस्तु खरीदने वाले को मिलती है उस व्यवस्था का नाम पूंजीवाद है। जिस व्यवस्था में वस्तु डंडे वाले को मिलती है उस व्यवस्था का नाम सैनिक शाही है, और जिस व्यवस्था में कुर्सी वाला सब कुछ हड़प सकता है उस व्यवस्था का नाम राज्यवाद है। राज्यवाद, पूंजीवाद और शस्त्रवाद, इन तीनों से मनुष्य को उबारना है। किस मनुष्य को? जिसके हाथ में औजार है, जो सबको बनाता है और जिसकी सेवा करने के लिए आप जाते हैं, उसकी सेवा करिए कीजिए, लेकिन उसको यह बतलाइए कि हम सबको बनाने वाला तो तू है। हम बाबू लोगों का चश्मा और हम बाबू लोगों के बूट और कोट और पैंट, इट्स द ग्रे कोट दैट मेक्स द जेंटलमैन। तो ये जो तुम्हारे बूट सूट है ये बनाने वाला तो तू है, तूने हमको बनाया है। तुझे सब लोग आकर कहते हैं कि हम तुझको बचाएंगे, हम तेरा उद्धार करेंगे, हम तुझे उबारेंगे, झूठे हैं। उनसे कहो कि तुम कौन होते हो उबारने वाले, तुमको तो मैंने बनाया है। मित्रों, मनुष्य वह है जो मैं सवेरे कहा था कि नाप मनुष्य होगा, वो नाप मनुष्य होगा जिसके हाथ में औजार हैं। वो मनुष्य मनुष्यता का नाप बनेगा, क्योंकि वो सबको बताता है। औजार जीवन देता है, हथियार जीवन हर लेता है। अगर मैं एक सेव या ककड़ी काटूं तलवार से, तो मेरे बेटे वजू भाई भी कहेंगे कि स्वाभाविक है, इसके घर में तलवार कभी थी नहीं, ये तलवार का उपयोग क्या जाने। तो मैं पूछता हूं, भाई तलवार का सदुपयोग क्या है? गर्दन काटना। हथियार का सदुपयोग गर्दन काटना है। और फल काटना हथियार का दुरुपयोग है, गर्दन काटना चाकू का दुरुपयोग है, फल काटना चाकू का सदुपयोग है। जो जीवन देता है उसे जिलाओ, जो जीवन हरता है उसका अंत होना चाहिए। मार्क्स से पूछिए, माओ से पूछिए, लेनिन से पूछिए, ये क्रांति, ये प्रश्न अहिंसा हिंसा का नहीं है। हथियार नहीं रहेंगे, औजार रहेंगे। इसलिए क्रांति की प्रक्रिया औजार की प्रक्रिया होगी, हथियार की प्रक्रिया नहीं। हथियार से क्रांति होगी तो सिपाही क्रांति को ले जाएगा, औजार से ही क्रांति होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि अपने से पूछो कौन सा समाज चाहते हो, कैसा समाज पा चाहते हो। बस एक बात और कहूंगा, हमारे देश में एक राजनीति और है, और वो राजनीति है उभरती हुई उदीयमान अस्मिता की। हमारे देश का जो अछूत है, कोई स्थान हमारे समाज में उसका है, उसके बाप दादाओं का है। मित्रों, हमारे हिंदू समाज में तो चारों वर्णों के लिए एक शब्द ही नहीं है। ये हिंदू शब्द बहुत बाद में आया, चारों वर्णों के लिए एक शब्द हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है। यहां पर इसलिए सवर्ण अछूत, तेली माली, ब्राह्मण अब्राह्मण, इस तरह का की राजनीति है। ये आदिवासी, ये अछूत, बतलाइए अपनी अस्मिता को कहां खोजे। अमेरिका के गुलाम हैं काले अमेरिकन, उनमें से एक ने अभी अभी एक किताब लिखी, रूट्स नाम, बहुत बिकती है, बेस्ट सेलर कहलाती है, बहुत ज्यादा बिकती है। अमेरिका में मैं रहता हूं, अमेरिकन हूं, काला अमेरिकन हूं, लेकिन मैं खोजू कहां, मैं अपने मूल कहां खोजू, जड़ें कहां खोजू। 12 साल तक कोशिश की और अंत में ये किताब लिखी, जिसमें यह कहा है कि ये गोरे लोग मेरे पूर्वज को जबरदस्ती अपने चाय के बागों में गुलामी करने के लिए पकड़ कर लाए, लेकिन हम आजाद थे, अफ्रीका में थे, सब कुछ थे लेकिन आजाद थे। गांधी का इस देश के आध्यात्मिक लोगों ने भी गौरव इसलिए किया कि गांधी ने यह समझ लिया कि आजादी के बिना कोई चारित्र, कोई कैरेक्टर कहीं विकसित नहीं। ये फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं, इस फोटो की एक नेगेटिव होती है, नेगेटिव यानी उल्टी उसकी प्रत कॉपी होती है। इसको डेवलप कहां करते हैं, कहां इसको साफ करते हैं, डार्क रूम में, अंधेरी कोठड़ी में। गुलामी वो अंधेरी कोठड़ी है जिसमें सारे नेगेटिव्स डेवलप होते हैं, सारे दुर्गुण, सारे अवगुण गुलामी में पनपते हैं। गांधी ने इसको समझ लिया। हमारे यहां का आदिवासी तो अस्मिता खोज सकता है अपनी पुरानी संस्कृति में, लेकिन ये अछूत कहां खोजेगा, ये भंगी अस्मिता को कहां खोजेगा। इसलिए नई अस्मिता का निर्माण वो जीवन के सारे क्षेत्रों में करना चाहते। इस देश के सवर्ण लड़कों और लड़कियों, उसका स्वागत कीजिए, उसको बधाई दीजिए कि वो एक अस्मिता की खोज में है। ब्राह्मण को बधाई नहीं, उसकी अस्मिता क्रांति के खिलाफ है। क्षत्रिय को बधाई नहीं, उसकी अस्मिता क्रांति को रोकती है। वैश्य को बधाई नहीं, वो सबको खरीद रहा। बधाई उस अंत्यज को, उस अछूत को जो अपनी अस्मिता खोजते खोजते नई अस्मिताओं को बनाना चाहता है। गांव में आप जाते हैं, गांव का नक्शा बदलना है। गांव में जातियों के मोहल्ले हैं, गांव किसी एक का नहीं, एक जाति का नहीं, और ये सारी जातियां एक दूसरे की अगल बगल में रही, साथ कहीं नहीं रही, कभी साथ रहे नहीं। हिंदू मुसलमान अगल बगल में रहे, साथ नहीं रहे। ब्राह्मण भंगी अगल बगल में रहे, साथ नहीं रहे। तो अब एक नई राजनीति की आवश्यकता है, जो राज्य की राजनीति नहीं होगी, जो लोगों का राजकारण होगा, लोक कारण होगा, और उसका विकास अब आप करेंगे, तरुण और तरुणियां करेंगे। विनोबा ने अपने भूदान यज्ञ में इसका पुण्याह वाचन किया, संकल्प पढ़ा। एक जगह पर आकर वो रुक गया, असफल हुआ, पराजित नहीं हुआ। पराजय अलग चीज है, असफलता अलग चीज है। असफलता में से प्रेरणा मिलती है, पराजय में से निराशा होती है। तो हम पराभूत होने को तैयार नहीं है। तरुणाई के शब्दकोश में पराजय जैसा कोई शब्द नहीं है, नहीं होना चाहिए। दो शब्द तरुणाई के कोश में नहीं है, एक असंभव और दूसरा पराजय। असंभव वो कहलाता है नाहक, जो हमारी पकड़ में नहीं है लेकिन पहुंच में है। पकड़ से पहुंच की तरफ जाना प्रगति है। पॉलिटिक्स के बारे में कहा गया है ना, इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जो व्यवहार्य है उसकी कला का नाम राजनीति है, लेकिन क्रांति जो अव्यवहार्य है उसको व्यवहार्य बनाने की कला है। जो आज तक नहीं हुआ वो कल होकर रहेगा। दिल्ली में ऐसा दिन कभी नहीं था जब वहां राजा न रहा हो। दिल्ली राजधानी रही, आज लोकधानी हो गई। सौराष्ट्र में ऐसा दिन कभी नहीं था जब कोई छुटपुट छोटे मोटे राजा या न रहे हो। अब सौराष्ट्र की भूमि पर एक भी राजा नहीं। क्या किसी ने समझा था कि ऐसा दिन आएगा? आ गया, अपने आप नहीं आया, मनुष्य के पराक्रम से आया। उस पराक्रम की आकांक्षा मेरे चित्त में आप लोगों से तरुण तरुणियों से है। उस आकांक्षा में आप मिलकर काम करिए, लड़के और लड़कियां। लेकिन जब तक लड़कियां लड़कों से डरेंगी और लड़के लड़कियों की तरफ ऐसे देखेंगे जैसे शेर बकरी का देख रहा हो, तो क्रांति नहीं हो सकती। ये लड़का पुरुष नहीं है और वो स्त्री नहीं, क्योंकि वो क्रांतिकारी नहीं, वो लड़कों से डर नहीं था, आश्चर्य नहीं है, ये क्रांति निष्ठा है। ये क्रांति का दर्शन है, क्रांति की आंख है। भगवान ने अर्जुन को दी, ईश्वर करे कि हमारे देश के लड़के लड़कियों को ये आंख प्राप्त हो और इसकी बदौलत इस देश में सौहार्द, सद्भाव और सौमनस्य की राजनीति का उपक्रम हो। मैं उस समय नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी बाद की पीढ़ी के लोग बड़ी उत्कंठा से उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करेंगे, उसका इंतजार करेंगे, और कि उस दिन को लाने के लिए वह क्षीण हो गया हूं। लेकिन लोहार का यह धोंकनी है लोहार के भाते जैसे, तो वो चल पड़ती है। आपने ये लंबा भाषण इतने ध्यान से सुना, तरुणों ने सुना खासकर, इसके लिए धन्यता का अनुभव करता हूं। और आप सबको मेरी ये आकांक्षाएं, मेरी ये वेदनाएं आपके चरणों में समर्पित करके सबको नमस्कार करता हूं।